जालल्लाहु अल-काबतल बैतल हराम। अल्लाह ने मुकामे मोहतरम काबा को लोगों के लिए इज्तमाई ज़िंदगी के क्याम का ज़रिया बना दिया, यानी काबा की वजह से ये दुनिया कायम है। जिस दिन काबा गिर जाएगा या गिरा दिया जाएगा, उसके बाद दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। और माहे हराम और कुर्बानी के जानवरों और कलादों को भी इस काम में मावन बना दिया, ताकि तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन के सब हालात से बाखबर है और उसे हर चीज़ का इल्म है। एलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और खूब जान लो कि अल्लाह सज़ा देने में सख्त है और इसके साथ बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला भी है। देखिए कितनी खूबसूरत आयत है। एक तरफ वो सख्त अज़ाब देने वाला है और दूसरी तरफ बता दिया कि वो बड़ा रहम करने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि जो बंदा जैसे अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला करेगा। अपने लिए भी यहाँ हम मुहासबे का नुक्ता लिख सकते हैं कि क्या वाकई मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला सज़ा देने में भी सख्त है और दरगुजर और रहम भी करने वाला है। रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुँचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो, पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं, ख्वाह नापाक की बोहतात तुम्हें कितना ही फरेफ्ता करने वाली हो। बस ऐ लोगो जो अक़ल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। कितना खूबसूरत नुक्ता। आज दुनिया में किस चीज़ का शोर है? खूब हो, ज़्यादा हो, किसकी इज्जत समझी जाती है? जिसके पास दौलत ज़्यादा है, जिसका घर बड़ा, जिसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड की है। अल्लाह कहते हैं नहीं, तुम जितना मर्जी खबीस जमा कर लो, कचरे का ढेर हो और उसके मुकाबले में एक कोने में गुलाब की पत्तियां हों, वो थोड़ी हैं लेकिन वो अच्छी होंगी। आज इंसानियत भाग रही है कसरत की तरफ, अल्हाकुम अत्तकासुर। आप देखिए कि एक इंसान बड़ा घर क्यों बनाता है? अमूमन एक तो है ना शौक है, देखा देखी है और हो गई बात, लेकिन अमूमन इसलिए होता है कि इज्जत होगी। मुझे पता है कि जान पूछ के औरतें जब ऐसे जगहों में होती हैं और फिर परेशान होती, खाए घर संभालना नहीं जा रहा, ये नहीं वो नहीं, बस अब देखा कि सिर्फ दो मियाँ बीवी होते हैं पूरे घर में, बच्चे तो पहले ही जा चुके, अब उस घर की देखभाल नहीं। बाज़ लोग इसलिए खींच खींच के लोगों को अपने घरों में लाते हैं कि आए हमारे घर रहे, मेहमान बने, क्योंकि हमारे घर में रौनक नहीं है। कभी पूछे कोई इंसान कि इतना बोझ अपने कंधों पर लादा है, हलाल से मिला खुशी से लीजिए, बस हिसाब के लिए तैयार रहें, लेकिन हराम से मिला तो फिर उसके लिए मुहासबे की फिक्र है। अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाएं, थोड़ा खालिस लेना है, ज़्यादा ना खालिस है। आपके पास थोड़ा सा शरबत है, आप उसमें दो तीन घूंट पानी के डाल के पी लें या पूरा ग्लास भर के पिएं, क्या बेहतर है? जायका अच्छा है ना? हंडिया पका रहे हैं, आप कहते अच्छा टेस्ट तो तब बनता है जब गोश्त को अच्छा भून लें बस, और आप कहते उसमें दो ग्लास पानी डाल दें ताकि क्वान्टिटी बढ़ जाए। सबको पता है क्या बेहतर है, अल्लाह यही चाहता है। नेकियां जो कर रहे हो उसको इखलास के साथ करो, बड़ी बड़ी नेकियां भाग दौड़ के कर रहे हो और जिसको तुम्हें पता भी नहीं अल्लाह के नबी ने की भी थी कि नहीं, कुछ सुन्नत है कि बिदत है, ऐसी बड़ी बड़ी नेकियों के अंबार के आगे वो फ़राइज़ और वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी के ज़रिए पता चल गई उसको कर लो, कल अल्लाह इसकी कदर करेगा। यहाँ हम अपने लिए भी नुक्ता नोट करेंगे कि क्या मैं लोगों की कसरत से मरऊब होती हूँ? क्या लोगों के बड़े घर देखकर मेरा सांस रुकता है? क्या लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलता देखकर मैं अपने दिल पर हाथ तो नहीं रख लेती? क्या किसी के गले में डायमंड का सेट पहना देखकर मुझे अपने शौहर पे गुस्सा तो नहीं आता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशया इन तुब्दा लकुम तसुक्कुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हों, लेकिन अगर आप इन्हें इस वक्त पूछोगे जबकि कुरान पाक नाजिल हो रहा है तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी, अब तक जो कुछ तुमने किया अल्लाह इसको माफ़ कर देगा, वो दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुबतला हो गए। अल्लाह ने कोई बहीरा साहिबा मुकर्रर नहीं की, ना वसीला और ना हम। ये मुशरिकीन मक्का के तवहमात थे, बहुत वहमी लोग थे, अपनी मर्जी से जानवरों को हलाल और हराम कर देते। मसलन जो ऊँटनी पांच बच्चे पैदा कर देती और आखिरी बच्चा नर होता तो तो कहते इसका कान चीर दो, अब ये बहुत अल्लाह वाली हो गई है और इसको इधर उधर छोड़ दो, कोई इस पर सवार ना होता, दूध ना पीता, जिसके पास जाती, जिसके खेत में से जाके चर लेती, खा लेती। इसी तरह साहिबा एक ऊँटनी को कहते हैं जिसे मन्नत पूरा होने पर किसी बुत के नाम पे छोड़ देते, न्याज मान लेते, बीमारी से शफा होती तो कर लेते शुक्राने के तौर पे। इस तरह जिस ऊँटनी से किसी ऊँट के जरिए 10 बच्चे पैदा हो जाते उसको भी छोड़ देते। इस तरह की बातें कर करके उन्होंने शरीयत को मुश्किल किया। क्या आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं? किसी ने मुझे बताया कि इंटीरियर के इलाके में गाय यानी कौ जो होती है वो फिरती रहती हैं, कोई उसको छेड़ता नहीं, कुछ नहीं। क्यों भाई, क्या है? कहते हैं ये अब्दुल कादर जिलानी की कब्र की गायें हैं। डोले शाही के चूहों का नाम आपने सुना होगा, लोग उनकी बददुआ लेने से डरते हैं। ये सब उसी जगह से उठा जहाँ की बातें हम सुन रहे हैं। तो वह खमात बेकार बातें, अल्लाह ने जानवर पैदा किए कि उनको खाओ, उनको पियो, उनका दूध लो। आज के दौर में कई लोग ऐसे हैं जो जानवरों का दूध नहीं निकालते, कहते उनको तकलीफ़ होगी। अल्लाह के बंदे, फिर अल्लाह ने उनको दूध दिया क्यों? और दूध ना निकालें तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। गैर फितरी चीज़ें आप देख रहे हैं, इस पूरे पारे में आपको सच पे लाया जा रहा है, हक पे, फितरत पे लाओ, बेकार कामों का नाम दीन ना रखो। होता भी यही है, जब लोग असल किताबों से दूर हो जाते हैं ना तो खुद साख्ता चीज़ों को दीन बना लेते हैं। आज भी लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी बातें रखी हुई हैं, अगर हमने फलां तारीख को दूध की खीर पका के ना बांटी तो हमारी भैंसें मरने लगेंगी, फलां की मन्नत ना मानी तो ये हो जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे क्यों ऐसी बातें करते हो, अल्लाह ने तो ऐसी बातें नहीं कही तुम्हें करने की। मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं, इनमें से अक्सर तो बेअक्ल हैं, कैसी वहमी बातों को मान रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नासिल किया, और आओ पैगंबर की तरफ यानी सुन्नत बातें करो, सुन्नत को मानो, अल्लाह के नबी की बात मानो, तो जवाब देते हैं हमारे लिए तो बस वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलो काना आबाउहुम ला यालमून शैया। अल्लाह ताला का ये कमेंट है, मैं नहीं कह रही, तर्जमा गौर से सुनिएगा। जब इनको इनकी रसूमात पर और इनकी बेकार चीज़ों पर रोका जाता है तो कहते हैं क्या करें, फिर हमारे तो बाप दादा ही ये करते थे, हम इसीलिए करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या ये बाप दादा की तकलीद ही करते जाएंगे, ख्वाह वो कुछ ना जानते हों और उनको सही रास्ते की खबर ना हो। यहाँ हम अपना मुहासबा कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाप दादा का नाम लेकर गलत चीज़ों को करना बहुत पसंदीदा मशगला होता है। तो हम अपने लिए नोट करेंगे, क्या मैं बाप दादा के नाम पर बेसोचे समझे कुछ रसूमात तो नहीं करती आई? जब मैं दीन के नाम पे कोई महफिल मुनक्किद करती हूँ तो कभी मैंने ये सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने ये काम किया? अगला नुक्ता लिखेंगे, अगर मेरे माँ बाप ने लाइल्मी और भोलपन की वजह से कोई काम कर लिया तो क्या इल्म आने के बावजूद भी मैं वो काम करती रहूँगी? और अगर कोई करेगा तो अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फ़िक्र करो, दूसरों को छोड़ो पहले अपनी तो फ़िक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। शर्त क्या है? अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुमको बताएगा तुम क्या करते थे। बहुत सारी बीवियों के एक इल्ज़ाम का जवाब है इस आयत में, मासरत के साथ, मैं खुद भी औरत हूँ इसलिए अगर मैं ऐसी बात कह दूँ तो कोई माइंड नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ही बारे में बात करूँगी ना। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर ख़वातीन हर नेकी के काम से रुकने या अक्सर गुनाहों के करने की वजह अपने शौहरों को गर्दानती हैं, हत्ता के प्लकिंग तक करती हैं, कहती हैं मियाँ को पसंद है, हिजाब मियाँ को पसंद नहीं, कुरान की तरफ आना उनको पसंद नहीं। ऐसा कभी हुआ? ऐसे लगता है कि कभी नहीं किसी को जानते, यदि पास लोग खुद दिल में हो ना हो लेकिन शोहरों का नाम लेके नेकी से रुकते हैं और कहते हैं मजबूर बहुत है। हालांकि आप देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यदुर्रुकुम मन दल्ला, तुम्हारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, शर्त है कि तुम तो हिदायत पे हो। दिल अपना नहीं चाह रहा होता किसी काम पे, नाम उनका लेते हैं, कि हम शोहरों से पूछ के हर बात करते हैं। हमने कितने जोड़े सिलवाए के हर जोड़े से पहले शोहर को पूछा? हमने जब जेवर बनवाना होता है तो शोहर से बनवा लेते हैं कि नहीं? तो याद रखिए, आज हम किसी इंसान का नाम लेकर अगर नेकी से रुक भी गए, कल क़यामत के दिन वो आके कह देगा अल्लाह मैंने इसको नहीं कहा था। यहाँ अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैं अपने शौहर का नाम लेकर तो नहीं नेकी से रुकती, क्या मैं अपने ससुराल वालों का नाम लेकर तो नेकियों से नहीं रुकती, क्या मैं अपने बच्चों का नाम लेकर तो नेकियों से नहीं रुकती, क्या मैं अपनी दोस्तों का नाम लेकर तो नेकियों से नहीं रुकती। और साथ ही इसको अपोजिट कर लें, गुनाहों को करना। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम अल्लाह से ज़्यादा दूसरों से डरते हैं, और अल्लाह से उम्मीदों की बजाय हमें दूसरों की उम्मीदें हैं। हालांकि हकीकत क्या है? इसी आयत पे वो शेर बड़ा फिट होगा जो मैं यकीनन गलत ही पढ़ूंगी, कि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। असल यह कि अभी ज़ौक ही नहीं आया। जो जन्नत को देख लेता है कभी पलटता है? आपको पता है आपके एक काम से अल्लाह राज़ी हो रहा है तो आप लोगों को देखेंगे कि वो खुश हैं कि नहीं? कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई खातून अपने शौहर या भाई या बाप के साथ शॉपिंग के लिए जाती हैं? मर्द अमूमन ज़्यादा घूमना नहीं चाहते, वो कहते जो लेना है ले लो, ख़त्म, चलो वापस चलते हैं। बेगम साहिबा भाग रही हैं, आगे जा रही हैं, आगे जा रही हैं। इतने में क्या होता है कि दोनों साथ जाते जाते बेगम को दूर एक चमकती हुई चीज़ दिखती है, वो फ़ौरन उधर भाग गई। अब वो गई, थोड़ी देर बाद देखा मियाँ तो पीछे ही खड़े हैं, वो कहते नहीं वापस आओ, मैं नहीं आ रहा। कहते नहीं इधर आओ, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, आप शॉपिंग करते रहे, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो भी कदम उठाते उतरते चले आएंगे कि चलो भाई किधर हो, क्योंकि आप नहीं पलटी तो वो आ गए। बस जिसको इस दुनिया में रहते हुए जन्नत नज़र आ गई है ना, चलता ही जाए चलता ही जाए। जो आज रुके हुए वो खुद ही आपका साथ देंगे, पीछे से आएंगे। आप एक दफ़ा पलट के आ गई तो फिर आपने तो उनका भी रास्ता रोक दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान वालो, इस पुकार को दिल पे लीजिए, क्योंकि सूरत मायदा के बाद बहुत दिन तक आप इस पुकार को नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि अगली सूरतें मक्की सूरतें हैं और वहाँ आमनू का लफ्ज़ कम आता है। ज़्यादा चीज़ों का हुक्म और मना की भी चीज़ें इन्हीं सूरतों में। तो हर दफ़ा जब ये पुकार आए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, तो आगे से क्या कहें? जी अल्लाह। अपने आप को चेक कर लें, हूँ ना, सो तो नहीं रही, कहीं और तो नहीं हो, कुछ और तो नहीं हो गया? तो अल्लाह ताला कहते हैं आओ ए ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, आ सकता है ना, और वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए शहादत का नसाब ये है कि तुम्हारी जमात में से दो साहब अदल लोग गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफ़र की हालत में हो और वहाँ मौत की मुसीबत आ जाए तो गैर लोगों में से दो गवाह ले लिए जाएं, फिर अगर कोई शक पड़ जाए तो नमाजों के बाद दो गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम किसी ज़ाती फ़ायदे की बस शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं, और ना खुदा वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे, लेकिन अगर पता चल जाए कि इन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया है तो फिर इनकी जगह दो और शख्स जो इनकी निस्बत शहादत देने के लिए अहलतर हों, इन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक तलफी हुई हो, और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज़्यादा सच्ची है, हमने अपनी गवाही में कोई ज़्यादती नहीं की, और अगर हम ऐसा करें तो हम ज़ालिमों में से होंगे। इस तरीके से ये तवक्को की जाती है कि लोग ठीक ठीक शहादत देंगे, या कम अज़ कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं इनकी तरदीद ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर जाता है। अमल का नुक्ता आ गया ना। अगर मैं कभी अल्लाह की रहनुमाई से दूर हूँ तो क्या मैं मानती हूँ कि ये मेरी ही किसी नाफरमानी की वजह से? ये बहुत बड़ी हकीकत है। हमारे कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें हिदायत की तरफ आने ही नहीं देता। हम कहते हैं हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे, पता नहीं क्यों रुकावटें आ गईं। बस दफ़ा वो रुकावटें इंसानों की तरफ से होती हैं, हमारे घर वाले, हमारे करीबी, हमारा माहौल, हमारी जॉब, हमारा स्कूल, हमारा बिजनेस, यही है ना रुकावटें। लेकिन उसकी वजह हमारी नाफरमानी है। अल्लाह ताला देखना चाहता है। कभी आपने हर्डल रेस देखी होगी, रुकावटों वाली जो रेस होती है, रुकावटें आती हैं तो क्या उसके ऊपर रुक जाओ? उसमें तो खेल ही है कि रुकावटों को हटाते जाओ और चलते जाओ, उलझो नहीं, बस इधर से उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ और तुम पहुंच जाओगे। ये दुनिया भी हर्डल रेस है। अल्लाह ताला हमारे नेकियों के रास्ते, जन्नत के रास्ते में रुकावटें लाता है। हो सकता है आज आपके आने से पहले कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी होगी। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग नहीं आए वो प्रॉब्लम से नहीं आए, क्योंकि वो तो बेचारे हैं ही नहीं, लेकिन कई लोग हो सकते हैं जो कल थे आज नहीं होंगे, क्या रुकावट बनी? जो लोग वीकेंड्स पे आ रहे हैं वो आजकल नहीं आ रहे, क्या रुकावट है? जॉब, स्कूल, कल तक हम सुन रहे थे आज हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि स्कूल खुल गए, बच्चों के स्कूल खुल गए। ढूंढिए इन रुकावटों को। अल्लाह कह रहा है, देखो मैं तुम्हारी इन रुकावटों की वजह से तुमको आजमाता हूँ, और अगर तुम नाफरमानी करते हो तो मैं तुमको हिदायत से दूर कर देता हूँ। या फिर चेकलिस्ट बनेगी, क्या मैं उन रुकावटों को पहचानती हूँ जो मुझे हिदायत के रास्ते से दूर कर रही हैं? क्या उन रुकावटों को उबूर करके फिर भी हिदायत के लिए आती हूँ कि हिम्मत हार देती हूँ? हाल क्या होता है कि दुनिया के पीछे भागते भागते जब थक जाते हैं तो कहते हैं अब अल्लाह के लिए वक्त नहीं रहा। अल्लाह तो कहते हैं फ़ाइज़ा फ़रख्ता फ़नसब, जब फारिग हो जाओ तो और मेहनत करो।